करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो
शांति। आप सबका इस रात्रि के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सब सुबह सुबह से सुन रहे हैं तो सोच रहे होंगे इतना सब, और है भी सब कुछ अच्छा, तो लगता है सब कुछ हम अपनी बुद्धि में अपने दिल में संजो के रखें, याद रखें। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत अच्छी बहुत गहरी शक्ति होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो आप अपने को ये थॉट बिल्कुल नहीं दीजिएगा कि हमने इतना सुन लिया है, आप यही दीजिएगा कि हमारे पास में बहुत कैपेसिटी है। और जिस तरह से आप कैमल को तो सभी जानते हैं ना, कैमल क्या करता है, पानी भर के रखता है, जब जरूरत होती है तो उस पानी को यूज करता है। तो आप अभी तो सब भरते रहिए, कैमल की थैली की तरह आप अपने बुद्धि में सब भरते रहिए और फिर बाद में चर्निंग कीजिएगा। तो अभी आपके पास में इनफ स्पेस मिल जाएगा ताकि अब अभी जो बहुत अच्छी बातें हम सुनने जा रहे हैं उनको आप अपने अंदर इम्बाइब कर सकेंगे। तो आज हमारे बीच में अभी इस सत्र में आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी आए हैं। आपको सभी जने प्रथम दिन उद्घाटन दिवस पर हम सब सुन चुके हैं। आप 1962 से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपने 1963 में ग्रेजुएशन करके पीजी और एआईएसएम किया। फिर 28 वर्षों तक आपने ओएनजीसी में क्लास वन ऑफिसर के रूप में सेवाएं प्रदान की। और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे 1962 में, तभी आप इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और तभी से बेहद रूप से ये अपनी सेवाएं भी देते रहे हैं, ज्ञान को भी अर्जित करते रहे हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी लीडरशिप में 7 एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स देश विदेश में आयोजित किए जा चुके हैं और इसके लिए आपको देन एचआरडी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे उनके द्वारा पर्यावरण श्री का अवार्ड भी 1992 में दिया जा चुका है। In addition to that, in recognition of his services in the field of human resource development, he was also honored by an international award, International Association of Education for World Peace and Commonwealth Association for Education and Training of Adults in 2004. आपने विभिन्न organizations में 500 से भी ज्यादा lectures दिए हैं और आप बहुत अच्छे वक्ता होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपने 5 किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने अनुभवजन्य वक्तव्यों से श्रोताओं को बहुत लाभान्वित किया है। आप यूके, यूएसए, यूरोप, नेपाल आदि देशों का भी भ्रमण कर चुके हैं। अभी हम आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सुनेंगे, हम सभी जिंदगी में क्या चाहते हैं, खुशी, जॉय। तो उसी टॉपिक पर, जॉय इन लाइफ पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। चंद पंक्तियों के बाद मैं ये माइक सिंघल साहब को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी। खुल जाएं गर उलझे जीवन के तार, खुल जाएं गर उलझे जीवन के तार, तो महक जाए जीवन आ जाए बहार, तो महक जाए जीवन आ जाए बहार, ये विश्व सारा नजर आए एक परिवार, खुश रहें खुशी बांटें, खुश रहें खुशी बांटें, यही है जीवन का सार, यही है जीवन का सार।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सार तो जीवन का बता ही दिया बहन जी ने कि हम खुद खुश रहें और खुशी बांटते चले। आज के लेक्चर का भी ये सार है। वास्तव में ये कोई लेक्चर नहीं, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान है, क्योंकि हम सभी जीवन में क्या क्या चीज चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख शांति। अंग्रेजी में कहा जाता है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों फिर भी स्थूल चीजें हैं, हमारे शरीर से संबंधित हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो किससे संबंध रखती है, वो मन से संबंध रखती है। क्योंकि अगर वेल्थ भी है, हेल्थ भी अगर है, लेकिन मानो संबंधों में कटुता है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो भी मन खुश नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भी ना सब चीजों का सार बता दिया है, पूरे जीवन का सार ही क्या कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। गीता में भी पूरा ज्ञान वगैरह सुनाया और क्या कहा, मन मनाभाव, धन मनाभाव या तन मनाभाव या संबंध मनाभाव नहीं, मन मनाभाव। इसीलिए ये जो हैप्पीनेस है ये मन से कनेक्टेड है, और मन के जो रूल हैं वो बाहर की दुनिया के रूल्स और नियमों से अलग है। कैसे? क्योंकि बाहर की दुनिया के नियम है कि हमारे पास अगर कोई चीज है और हम अगर शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो क्या होता है, वो चीज कम हो जाती है। मेरे पास मानो 100 रुपए है, मैंने 50 आपको दे दिए तो मेरे पास 50 रह गया। लेकिन मन का जो नियम है ये आध्यात्मिक नियम है, ये कुछ अलग है। मन में अगर खुशी है, मानो हमारा बच्चा है बहुत फर्स्ट क्लास पास हो गया, उसका कहीं इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन हो गया, जो हम चाहते हैं, बस हम सबको सुना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, उससे क्या हमारी खुशी कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो इसके नियम, मन के नियम अलग ही हैं। इसी प्रकार से मानो हम कार में जा रहे हैं, कार का एक्सीडेंट हो गया कहीं, कार तो बिल्कुल काफी खराब हो गई, टूट फूट गई, देख के ही सब लोग बोलते हैं पता नहीं इसमें चलाने वाला बैठने वाला बचा होगा कि नहीं। लेकिन हमें भी चोट आई, कार के अंदर थे, तो हमारे दोस्त आते हैं, मित्र वगैरह, उन्हें पता चलता है, आके कहते हैं अरे भाई चलो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, कार को तो देख के लगता है कि शायद कोई बचा भी होगा कि नहीं, लेकिन चलो आपके तो थोड़ी चोट आई है, भगवान का शुक्र है, कार का तो चलो रिपेयर हो जाएगी, लेकिन जान बच गई, इससे बड़ी और क्या चीज। तो वो आया, उसने दुख जो है बांट लिया, और बांटने से फिर हमारा भी दुख कम हो गया और हमें भी लगा चलो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, जान बची। तो मन के नियम भी जो है हैप्पीनेस को, इसीलिए कहा जाता है कि हैप्पीनेस शेयर्ड अगर है, खुशी, जॉय, इफ इट इज शेयर्ड इट इज डबल्ड, एंड इफ इट इज द सॉरो, दुख अगर प्रॉपर वे में अगर डिवाइड कर लिया जाता है तो वो आधा हो जाता है। तो दुख और सुख ये तो जीवन का नियम ही है। तो इसलिए आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि सुख, ये एक होता है भौतिक सुख, शरीर का, धन है, मकान है, प्रॉपर्टी, सब चीज है, लेकिन हैप्पीनेस या जॉय वो अलग चीज है। धन हो सकता है लेकिन अंदर खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम अंदर की खुशी के ऊपर ही आज हम सब लोग चर्चा करेंगे। और धन से कहा जाता है बहुत सारी चीजें खरीदी, मकान खरीदा जा सकता है, दवाई खरीदी जा सकती है, लेकिन दवाई तो खरीद ली लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। मकान खरीद लिया, मकान में परिवार रह रहा है, लेकिन संबंधों में भी मधुरता हो कटुता ना हो वो मकान पर तो निर्भर नहीं करता है। इसीलिए और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की जो बात करते हैं हम, तो हेल्थ के लिए भी बहुत लिटरेचर उपलब्ध है, बहुत किताबें हैं, इंटरनेट पर भी बहुत कुछ है। इसीलिए कहा गया है हम जिस युग में जी रहे हैं इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है। इसी तरह वेल्थ के ऊपर भी बहुत किताबें हैं कि हाउ टू बिकम मिलियनायर विद इन शॉर्ट पीरियड, कैसे धन को मल्टीप्लाई करें आदि आदि। लेकिन हैप्पीनेस के ऊपर कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये अंदर की मन की बात है। तो इसीलिए आज हम शुरू करते हैं हैप्पीनेस के एक फार्मूला से। ऐसा कोई फार्मूला है जिससे जीवन में खुशी हो, हैप्पीनेस हो? कुछ याद आता है कोई किसी प्रकार का फार्मूला है हैप्पीनेस में? क्या है खुशी? इसका एक बड़ा अच्छा किसी ने फार्मूला इजाद किया है, हैप्पीनेस खुशी, इसको कहा है कि अचीवमेंट्स अर्थात प्राप्तियां और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस अर्थात अपेक्षाएं। अब देखिए ये फार्मूला है, हैप्पीनेस खुशी, ये अचीवमेंट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं बता रहा था भाई हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा मकान बहुत अच्छा बन जाए, उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं तो खुशी होती है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है। लेकिन नीचे जो एक्सपेक्टेशन है ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ जिस पर निर्भर करता है हमारी खुशी का। क्योंकि आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं तो उसमें न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और एक्सपेक्टेशन अगर हमारी बहुत है, मानो हम बच्चे से ही एक्सपेक्ट करते हैं चलो भाई बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा, जब हम रिटायर हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे, तो अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारी मीट नहीं होती हैं, हमारी फुलफिल नहीं होती हैं, तो क्या होगा, खुशी हमारी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। तो इस लाइट, अच्छा यहां पर वरी जरा लाइट दे सकेंगे इधर और, अच्छा ओके भाई इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, उधर थोड़ा कम हो। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस जो है, ये प्राप्तियां, ये मनुष्य के, आप ये देखिए कि एक्सपेक्टेशन अगर हमारी बहुत ज्यादा हुई तो हैप्पीनेस क्या होगी? कम होगी। तो जीवन में एक सुख का नियम ये है, जॉय, लाइफ एंजॉय करने का, कि हम हां बच्चों को इनपुट दें, पढ़ाएं लिखाएं, पैरों पर खड़ा करें, लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस उनसे कम से कम करें, जिनके भी सही, इवन बच्चों की बात नहीं, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, माता पिता से, जिनसे भी संबंध में आते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस कम। एक ये फार्मूला। और अपेक्षा के साथ साथ एक दूसरा शब्द है, वो है उपेक्षा। तो अगर हमारी अपेक्षा हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हमें दुख होता है, और उपेक्षा अगर हम उपेक्षा किसी की करते हैं तो उसको दुख होता है। और ये सुख का और जॉय का, ये एक संसार का एक स्पिरिचुअल नियम है कि हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसे वाइब्रेशंस होते हैं, जैसा हमारा ऑरा होता है वैसा ही हम वातावरण बनाते हैं। अगर हम किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं धीरे 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 वो भी हमारे प्रति शुभ भावना रखेगा। हम किसी की उपेक्षा करेंगे, मुंह से मीठा बोलेंगे लेकिन अंदर से हमारे लिए, हमारे मन में उसके लिए नेगेटिविटी होगी, तो उसके मन में भी हमारे लिए नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक भाव होगा। इसीलिए अगर हम हमारे जीवन में खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं अंदर का, तो हमें दूसरों के प्रति भी वैसा ही भाव रखना पड़ेगा। तो ये सुख का एक नियम है। और सुख के क्या क्या नियम है? हा? जीवन को ना, ये जीवन जो है हमारा चार शब्दों से ये बना हुआ है। हा? देख रहे हैं ये चार शब्द क्या है? ये एल आई एफ ई, लुक इंटरनली एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली, यू सी। तो ये जीवन के लिए बहुत कुछ कहा गया है। आप भी अभी यहां पर आए हैं, किस जगह आए हैं आप लोग? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, एकेडमी में, विद्यालय में। और एकेडमी में क्या करा जाता है? पढ़ा जाता है, पढ़ाई। तो पढ़ने के लिए भी बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, जिंदगी का पढ़ाई से क्या कनेक्शन है, कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा मौत को फुल स्टॉप समझो। जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश तनी हुई होती है, बुढ़ापा कॉमा कॉमा की तरह जरा आदमी बन जाता है ना, कमर उमर झुक जाती है, और मौत को फुल स्टॉप समझो। तो अगर हम ये जीवन यात्रा है, आपको बताया जा रहा होगा ट्रांसपोर्ट, यहां तो यात्रा की ही बात हो रही है, तो ये जो यात्रा है, यात्रा हम करते हैं तो ये नहीं होता कि हम हमेशा यात्रा करते ही रहे, कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन आता है, वापस घर आते हैं। इस यात्रा में अगर हमें ये मालूम है कि हमें यहां रुकना है, स्टॉप फुल स्टॉप लगना है, और उसके लिए अगर हम मानसिक रीति से तैयार रहते हैं, जीवन में सदा खुशी रहेगी। होता क्या है, हम यात्रा शुरू कर देते हैं लेकिन कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहता, रुकना नहीं चाहता, कितनी विडंबना है। एक प्रोफेसर की बात याद आती है, एक बहुत फेमस प्रोफेसर थे, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, टिकट चेक कराया, टिकट मांगी, तो ढूंढने लगे इधर उधर, टिकट वगैरह नहीं मिली। सुनाया आपने ये? बहुत देर तक ढूंढते रहे, खैर टिकट चेकर ने बोला मैं तब तक दूसरों की चेक करके आता हूं, आप जरा ढूंढ लीजिए। वो चला गया, काफी देर बाद आया, फिर भी प्रोफेसर साहब सब जगह अटैची सब जगह ढूंढ लिया। तो उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप इतने रिनाउंड प्रोफेसर हैं, इतने रेपुटेड हैं, कोई बात नहीं, आपने इधर उधर रख दिया होगा, मैं इस बात का कॉग्निसेंस नहीं लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं मैं जाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे टिकट तो ढूंढनी पड़ेगी ना। क्यों? मैं समझ गया आपने टिकट ली होगी, आप विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। तो प्रोफेसर बोलते हैं नहीं मुझे तो ढूंढनी पड़ेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां उतरना है, ऐसे एब्सेंट माइंडेड। बस यही हम सब लोगों के जीवन की बात है, यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन कहां पर हमें डेस्टिनेशन में उतरना है वो हमें मालूम नहीं। इसीलिए हम सोचते हैं शायद ये हमारी यात्रा अनंत होती रहेगी, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है भाई दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यही कि हम सब जानते हैं बहुतों के उसमें जाते हैं डेथ सेरेमनी में, मृत्यु उसमें शमशान गृह में, दूसरों को अंतिम संस्कार में, लेकिन हम ये मान बैठे हैं कि शायद मुझे कभी नहीं मरना है, और इस कारण से हमारा व्यवहार वैसे होता रहता है। तो जीवन में एक सुख का ये भी नियम है, आनंद का ये नियम है कि हम जीवन को यथार्थ रीति से पहचान के, एक जीवन का है आंतरिक पक्ष, एक है जीवन का है बाह्य पक्ष। हम सभी जानते हैं बहुत प्रमोशन, पैसा, पावर, पर्क्स, प्रेस्टीज, ये सब चीज चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जीवन का ये आंतरिक पक्ष है ये भी बहुत स्ट्रेंथन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब जीवन के अंदर कभी कोई तनाव होता है, एंजाइटी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये ही पक्ष हमें शक्ति देता है। इस कारण से ये आवश्यक है जीवन के अंदर कि खुश सदा रहे, उसके लिए ये जरूरी है कि मायूसी ना आए। तो ये जो जीवन के दो पक्ष हैं, ये दो टांग की तरह हैं, दो टांग होती है ना शरीर में, आदमी आराम से चलता रहता है। अगर एक ही टांग हो तो क्या होगा? बचपन का खेल याद है ना, वो कूद के करते थे, लेकिन कितनी देर तक कर सकते हैं। लेकिन आज यही हो गया है, जीवन में कई बार मायूसी उदासी आ जाती है, सब कुछ होते हुए भी। क्यों? कहा है बड़ा अच्छा किसी ने कि हो के मायूस नयो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। और ये दोनों पांव क्या है? ये है अध्यात्मवाद, ये है भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। तो ये दोनों पांव का अगर बैलेंस है, जीवन में कभी मायूसी उदासी दुख नहीं महसूस होगा। लेकिन है क्या आज विडंबना कि हमारा सारा ध्यान इस भौतिक पक्ष के ऊपर ही है और इधर ध्यान नहीं है? सोचते हैं भाई जब रिटायर हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब देखा जाएगा इस बात को। लेकिन ये देखिए, यही जो शब्द है ना LIFE है, इसके अंदर कोई विशेषता आपको दिखाई दे रही है इस शब्द में? ये जो मिडिल टू लेटर हैं, ये क्या है? IF, काश। यानी हमारा आधा जीवन जो है ना, वो इसमें ही गुजर जाता है, आधा जीवन। अरे यदि मैं ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, यदि मैंने ये स्टेप लिए होते तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाता, इफ आई हैव नॉट डन दिस थिंग तो प्रॉब्ली दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। तो जीवन हमारा आधा जो है पास्ट में ही गुजर जाता है, और काफी जीवन हमारा भविष्य के उसमें भी गुजर जाता है, प्लानिंग में। प्लानिंग करना अच्छा है भविष्य की, लेकिन भविष्य की चिंता करना, उसमें मनुष्य का काफी शक्ति चली जाती है। इसीलिए पुरानी कहावत है, याद होगी आपको कबीरदास जी की, कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दो पाट क्या है? एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, और खूंट पकड़ जो रहा उसे पीस सका ना कोई। चक्की में ना, आजकल तो खैर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारे मदर्स वगैरह या काफी पूर्वज यूज करते थे, जानते तो हम सब हैं। तो ये दो पार्ट है, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल। या तो हमें भूतकाल का चिंतन होता रहेगा या भविष्य की चिंता होती रहेगी, तो मनुष्य पिस जाता है। लेकिन जो खूंट पकड़ कर रहा, खूंट क्या है? प्रेजेंट, वर्तमान। तो जो वर्तमान में जीना जानता है वो सदा खुश रहेगा, जॉय रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी उसमें, क्योंकि उसे कहा ही है प्रेजेंट। प्रेजेंट कहां ले जाते हैं? प्रेजेंट जो है बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी वगैरह में ले जाते हैं ना। तो प्रेजेंट में जो जीना जानता है वो सदा खुश रहता है, क्योंकि आज जो प्रेजेंट है कल वो पास्ट हो जाएगा। तो अगर हमने प्रेजेंट अच्छा बना लिया और तो पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, और जिसका पास्ट और प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा होने की संभावना सदा ही बनी रहती है। इसलिए आधा जीवन हमारा ये चला जाता है। और इस शब्द में कोई विशेषता दिख रही है? यस, हाँ, उसका क्या मतलब है? कौन सा झूठ? यस, ओके, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, जस्ट आई एम स्पीकिंग LIFE, इफ यू जस्ट ओमिट F, LIE मीन्स आउट ऑफ फोर लेटर वर्ड, इफ दीज थ्री लेटर्स LIE, तीन चौथाई जीवन हमारा लाई में ही चला जाता है। कौन सा लाई? ये नहीं कि भाई कोई वनडे मैच हो रहा है और हम जरा देख रहे हैं इंटरेस्टेड, तो आज घर झूठी शान के, या लाई सबसे बड़ा यह है जिसका आज सुबह आपको पता चला। आज सुबह मॉर्निंग शिविर में क्या पता चला? कौन से सत्य का ज्ञान हुआ? बस अभी तक हम अपने को शरीर समझते रहे, और हमारा जीवन जो है ना, ऑन एन एवरेज, सपोज एवरेज लाइफ स्पान अगर 80 साल, 80 ईयर्स लगा लिया जाए, तो इसमें थोड़ा लाइट भी देते रहना बीच में, 80 ईयर्स, तो 80 ईयर का 3/4 कितना हुआ? 60 ईयर्स, विच इज रफली द रिटायरमेंट एज। तो बस जब तक जॉब करते हैं या जब तक एक्टिव लाइफ रहती है, तब तक यही सोचते हैं भाई मैं शरीर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बैरिस्टर हूँ, जज हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, आदि आदि। और इसीलिए 3/4 ऑफ अवर लाइफ गोज इन लाई। और जब ये ज्ञान मिलता है, जो आज सुबह आपको ज्ञान मिला, कौन सा, कि मैं आत्मा हूं, आत्मा इस शरीर को चला रही है, तो ये जब स्मृति आ जाती है तो जीवन में ना बहुत खुशी होती है। क्योंकि ये जब समझ जाते हैं कि ये आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। बस हम सब ने सुना है, पढ़ा है, माटी कहे कुमार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। बस ये जब ज्ञान हो जाता है और इस अनुभूति में हम स्थित हो जाते हैं ना, फिर क्या होता है कि बस ये चेतनता आ जाती है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो बस जैसा कल बात हो रही थी ना, मनुष्य आज तीन बातों से ग्रस्त है। कौन सी तीन बातें, कल आपको बताई गई थी ना, भ्रम, भय और भोग। आज मनुष्य इन तीन बातों से ग्रस्त है। भ्रम तो यही था कि मैं शरीर हूं, आज वो भ्रम दूर हुआ आपका, मैं आत्मा हूं। भय कौन सा, भाई धन खोने का, सत्ता खोने का भय, प्रेस्टेज को कम होने का, संबंध बिगड़ने का भय, आदि आदि अनेक अनेक भय हैं जीवन में। सबसे बड़ा भय कौन सा है, मृत्यु का भय, ये शरीर छोड़ने का भय। इसीलिए ये भय जब ये स्मृति हो जाती है, तो जब छोड़ना है शरीर तो मनुष्य फिर खुशी खुशी छोड़ता है। किसका उदाहरण है शास्त्रों में, अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त करने का, भीष्म पितामह का। बस शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन अगर हम अपनी इच्छा से छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है, दुख की अनुभूति नहीं होती। तो ये ज्ञान अगर बुद्धि में रहता है तो क्या होगा, भय भी खत्म हो गया। और भोगवाद की संस्कृति में तो आज हम जी ही रहे हैं। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये आवश्यक है, ये समझना कि ये जो खुशी है ना, ये खुशी हमारा अंदर का वो हिस्सा। आज आपको और क्या बताया गया, शरीर क्या है हमारा, आत्मा ड्राइवर है और शरीर मोटर है। हाँ, कितनी कीमत है इस मोटर की मालूम है भाई, किसी पे अगर भाई मोटर होती है मारुति होगी, और थोड़ा किसी पे रोल्स रॉयस होगी, बहुत बढ़िया से बढ़िया कार कौन सी होती है, हैं, रोल्स रॉयस, और कौन सी, ल्यूमेसिन, ठीक है। कितनी कीमत होगी उसकी, बढ़िया से बढ़िया कार भी हो तो चलो कितनी, 50 लाख करोड़, 2 करोड़, इससे भी ज्यादा होगी क्या। लेकिन इस कीमत, इस कार की कीमत मालूम है कितनी है, हैं? इस कार की कीमत है, टोटल डॉक्टरों ने एनालिसिस की है, 220 करोड़ रुपया। कितना करोड़, 220 करोड़। क्योंकि आंख की कीमत, हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन, कोई किडनी, लीवर, कितने शरीर के एक एक अंग जो डॉक्टरों ने निकाल के इसकी कीमत निकाली है, 220 करोड़। तो जब इतने कीमत है तब तो इसको संभाल के रखना चाहिए ना। इसी ने कहा है हेल्थ के लिए कौन सा पहला सुख, वो निरोगी काया। तो इसलिए तन मन धन, ये तीनों का संबंध जहां भौतिकता से है, वहां मन का संबंध आत्मा से है। और इस प्रकार से ये कीमत की जो ये है मोटर, कितनी वैल्यूएबल है, मैं इसका मालिक हूं। आप किसी बड़े घर के मालिक हो, बड़ी कार के, बड़ी फैक्ट्री के, खुशी होगी ना, तो ये खुशी रहती है कि मैं 220 करोड़ की मोटर का मालिक हूं। तो बस एक तो खुशी का ये भी साधन है कि भाई मैं इतनी बड़ी, इतना मोटर का मालिक हूं। और क्या है साथ में, इसके साथ साथ जीवन में ना 4 दिन की जिंदगी कहा जाता है बस लाइफ को। पहला स्टेज है लर्निंग। आदमी लगभग ना पहले 15-20 साल तक सीखता है, फिर उसके बाद जो भी वो पढ़ता लिखता है सीखता है उसमें इंडल्ज हो जाता है। ये दूसरा। तीसरा पहलू है, फिर उसके अंदर वो फाइंडिंग करता है, जब उसमें इंडल्ज हो जाता है इसका जीवन से क्या संबंध है, फाइंडिंग उसका लगा रहता है उस चीज में, आगे बढ़ता रहता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब धन भी मिल जाता है, संबंध भी, परिवार भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आदमी ये कुछ खालीपन की महसूसता करता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे जीवन में वो शांति, वो सुख, वो आनंद जो अंदर का वो नहीं है। तो एक तो चीज सुख चाहता है आदमी, हैप्पीनेस, और दूसरा क्या चाहता है? हाँ बताइए। बेसिकली दो चीज, एक सुख और दूसरी शांति। तो एवोल्यूशन जिंदगी का जब वो करता है लास्ट में, उसे लगता है कि भाई ये शांति क्यों नहीं आ रही है मेरे जीवन में, सब कुछ है, मन भटकता रहता है और कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता होती रहती है, तनाव है। तो जैसे ये हैप्पीनेस का फार्मूला है, ऐसा पीस का भी कोई फार्मूला है शांति का? हाँ बोलिए, शांति का फार्मूला क्या हो सकता है? बड़ा सिंपल, इसी तरह हैप्पीनेस की तरह ना, उसका भी एक फार्मूला है हैप्पीनेस का। तो ये पीस, इसका लाइट अगर दे सकते हो तो दे दो। शांति का फार्मूला है डिजायर्स, नंबर ऑफ डिजायर्स, इच्छाएं हैं, फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड, अर्थात तृप्त इच्छाएं डिवाइडेड बाय नीचे अतृप्त इच्छाएं। तो शांति जो है ना, अगर हम वास्तव में मन की शांति चाहते, क्योंकि शांति और ये सुख जो है, आनंद ब्लिस जो है, इनका बहुत गहरा संबंध है। ये दोनों सूक्ष्म चीज हैं, जबकि जैसा आपको बताया बाकी सब स्थूल चीज हैं। तो ये शांति जो है, तृप्त इच्छाएं डिवाइड बाय अतृप्त इच्छाएं, जितनी हमारी इच्छाएं तृप्त होती जाती हैं, फुलफिल होती जाती हैं, हमें बड़ा खुशी का, शांति का अनुभव होता है। लेकिन जितनी अतृप्त इच्छाएं होंगी, इच्छाएं हैं लेकिन तृप्त नहीं हुई हैं, उनके पीछे अभी हम भाग रहे हैं, तो जितनी अतृप्त इच्छाएं अगर बहुत ज्यादा होंगी तो शांति क्या होगी? कम होगी। इसीलिए कवि भरतहरि होके गए हैं, राजा थे वो, उन्हें जब वैराग्य हुआ तो वो गए और उन्होंने बहुत रचना की और उन्होंने कहा है, भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन धीरे 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 भोग हमें भोगते जाते हैं, वो हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। जैसे जानते हैं भाई, सिगरेट पीना कोई शुरू करता है, शुरू में वो समझता है मैं जब चाहे छोड़ दूं, लेकिन धीरे धीरे उसके वशीभूत हो जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इच्छाएं, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है लेकिन इच्छाएं कमजोर नहीं होती, इच्छाएं और बलवती होती जाती जाती हैं। तो इसीलिए पता कैसे चलेगा? इसका मतलब हम इच्छा न रखें? अगर इच्छाएं नहीं होंगी मनुष्य प्रोग्रेस कैसे करेगा? हमारे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी होके गए हैं, उन्होंने तो कहा मनुष्य को स्वप्न देखने चाहिए, बहुत आगे बढ़ने की लालसा, क्योंकि जितने उसका पॉजिटिविटी होगी, जितना आगे बढ़ने का लक्ष्य होगा, उतना वो लक्षणों को हासिल करता जाएगा। तो लेकिन इच्छाओं में और एम्बिशंस में अंतर है। एम्बिशन होनी चाहिए, लेकिन जब वो एम्बिशंस हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती है ना, वो इच्छा जब बन जाती है डिजायर, तो वो हमें दुख का कारण बन जाती है। पता कैसे चले? व्हाट इज द डिमार्केशन? दोनों में अंतर क्या है? कैसे पता चलेगा? ये जो जब डिजायर्स अति में चली जाती हैं, एम्बिशंस कंट्रोल में नहीं रहती, तो या रातों को नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आएगी तो स्वप्न में भी वो अतृप्त इच्छाएं परेशान करती रहेंगी। तो इसीलिए ये अपने को चेक करना है। और यहां पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो आपको मॉर्निंग में सिखाया जाएगा और आज से आपका शुरू तो हो गया, उसमें यही बताया जाएगा किस प्रकार से मन, जो कि थिंकिंग फैकल्टी है, सोचने की है, उसको किस प्रकार से हम कंट्रोल करें और किस प्रकार से एम्बिशंस हों, आगे बढ़ने की इच्छाएं हों, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। इस कारण से शांति और ये आनंद, जो सुख जॉय, ये दोनों जो सूक्ष्म चीज है, इन दोनों का आपस में हमारी थिंकिंग से बहुत गहरा संबंध है। और इसके साथ साथ क्या है, ये जब चार दिन की जिंदगी हमारी ऐसी है, राजा आत्मा जो है ना, वो राजा है। कैसे राजा है, देखिए राजा होता है ना, आज आपको कितना बताया गया आत्मा के कितने फैकल्टीज हैं, क्या क्या बताया गया आत्मा, कितने अंग हैं आत्मा के, चार। अच्छा कौन कौन से हैं, हाँ बताइए, मन, अच्छा ये तो तीन हुए, मन बुद्धि और संस्कार, तीन ही है वास्तव में। चित्त भी ना, ये जो है ये एक सूक्ष्म वो है, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या है, मंत्री है, बुद्धि जो है वो सेनापति है, और संस्कार जो है वो सैनिक है। तो मन जो है वो मंत्री है, अगर मन मंत्री जो है राजा से ज्यादा बलशाली हो जाता है तो क्या होता है, राजा कमजोर हो जाता है, मंत्री उसे अपने वशीभूत कर लेता है। तो ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण है कि बस मंत्री शक्तिशाली हो गया, फिर सारी प्रजा ही उस पर अत्याचार होते रहते हैं, क्योंकि राजा का बेसिकली प्रजा को अपने बच्चे की तरह समझता है। तो ये मन का काम जो है वो सोचना, बुद्धि का निर्णय देना, और संस्कार तो जैसा कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये आत्मा जो है ना, सोल, SOUL, इसमें आज आपको बताया गया ना आत्मा के कितने गुण हैं, सात। वेरी गुड, आप सब लोग तो एक ही दिन में परफेक्ट हो गए। कौन कौन से गुण है आत्मा के, हाँ बताइए, सुख शांति आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, ये सब जो है ये आत्मा के गुण है। लेकिन किसी ने कहा है, विचारक ने, सोल SOUL आत्मा का जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, SOUL सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, आत्मा जो है मुख्यतः प्रेम स्वरूप है। और इस प्रेम के कारण ही ना, जहां प्रेम होता है वहां पर सद्भावना होती है, आपस में मधुरता होती है संबंधों में। तो प्रेम के कारण ही ये संसार चलता है। और इसीलिए कहा गया संसार में दो मुख्य बातें, राग और द्वेष। तो राग यानी प्रेम, तो प्रेम अच्छी चीज है, लेकिन जब प्रेम का रूप बिगड़ जाता है ना, तो वो ही विकार बन जाते हैं। जब ये प्रेम जो होता है अपने शरीर के प्रति, ओ मैं धनवान हूं, शक्तिवान हूं, सत्तावान हूं, रूपवान हूं, ये अहंकार का रूप ले लेता है। जब ये प्रेम धन के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति बहुत हो जाता है, ये ही लोभ का रूप ले लेता है। जब ये अपने बच्चों, पति पत्नी, माता पिता, संबंधियों के प्रति हो जाता है, तो ये मोह का रूप ले लेता है। जब दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षण, तो काम का रूप ले लेता है, आदि आदि। तो प्रेम अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम को यथार्थ रीति से लेना वो आवश्यक है। तो इसीलिए कहा है सोल आत्मा जो है ना वो राजा है, शहंशाह। इसीलिए कहा है बड़ा किसी ने अच्छा, कि तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, शहंशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। आवश्यकता ये नहीं कि हम भगवान की पूजा ही करें, लेकिन हम खुद भगवान बन के जिए हैं, शहंशाह। और वो तब हो सकता है, शहंशाह राजा क्या होता है, उसके वश में उसकी प्रजा होती है। ये जो आप पीछे ब्रह्मा बाबा का फोटो देख रहे हैं ना, तो ये बाबा के साथ, जैसा मैं कल भी बता रहा था, मुझे रहने का मौका मिला और हम लोगों ने सुना है जब 1936-37 में संस्था की स्थापना हुई तो बाबा तो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, परिवार था, पत्नी बच्चे सब और जो संबंध होते हैं वो भी काम क्रोध लोभ मोह सब जैसे दुनिया होती है उस प्रकार से वो भी उसमें चल रहे थे। लेकिन जब बाबा को ये ज्ञान हुआ तो बाबा ने सबसे पहले मन को, और वो आज तक बाबा की डायरी रखी हुई है यहां कि बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया, मुझ राजा को तूने अपने वश में कर लिया, लेकिन अब मैं तुझे बता देता हूं हे मन कि अब मैं आत्मा राजा तेरे वशीभूत होके नहीं चलूंगा, मैं आत्मा अब अपने स्वधर्म में स्वशक्ति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ने मन को जैसे ऑर्डर दिया, ऐसी बाबा ने बुद्धि से बात कर रहे हैं बाबा, सब डायरी में बाबा का वार्तालाप जैसे अपने मन बुद्धि संस्कार से लिखा हुआ है। हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, भटकती रही, तेरे पीछे पीछे मैं भी भटकता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी बता देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी शक्ति में स्थित हो गया हूं। इस तरह हम सबको भी यही करना है तो जीवन में कभी भी मायूसी उदासी नहीं आएगी, और जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे ना, मन और बुद्धि ये हमारे वशीभूत हो जाएंगे, तब हम नहीं कहेंगे कि क्या करें, मन बहुत चंचल है, मन भागता है, हम चाहते तो नहीं, अक्सर करके हम ये कह देते हैं, लेकिन तब हमारी ये कंप्लेंट नहीं होगी। इसलिए आज आवश्यकता ये इस बात को पक्का करने की कि बस हम शहंशाह राजापन की स्थिति में जिए, और ये तब होगा जब हम समझेंगे कि मैं आत्मा मूर्ति हूं, ये शरीर मेरा मंदिर है। तो मंदिर की भी रोज सफाई करते हैं, मूर्ति को भी नहलाते धुलाते स्नान कराते सफाई, तो हम शरीर का तो स्थान ये करते हैं, मंदिर की सफाई सब कुछ, लेकिन क्या हम रोज ये देखते हैं कि मैं आत्मा जो मूर्ति हूं इसमें, मैं रोज उसकी भी सफाई करती हूं, उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना ये सब जो निगेटिविटी कचड़ा आ गया है, क्या इसको भी मैं रोज साफ करता हूं? इसलिए आवश्यकता यह है इसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहे। और फिर क्या है, हम सबके पास ना और भी इसमें है, हम सबके पास जब से हम पैदा होते हैं, हम सबके पास दो शक्तियां सबके पास हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, दूसरा है भूलने की शक्ति। ये शक्तियां हम सबके पास है, लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। बस मेरा आपसे मानो कुछ मतभेद हुआ, भाई भूल जाना चाहिए, चलो एक दिन हो गया, लेकिन वो तो बात मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगी, अच्छा जब मुझे चांस मिलेगा मैं भी ये करूंगा बदला लूंगा। और ये क्यों होता है कि हम दूसरे को माफ नहीं कर पाते। बस बहुत समय तक अगर एक कोई हमारा मित्र है और एक बार अगर दो बार कुछ ऐसा हो गया, उस बात को भूल जाना चाहिए, वो बात को भूल नहीं सकते, अब माफ नहीं कर पाते। और जब माफ नहीं कर पाते तो ये चीज हमें ही कष्ट देती है। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, और महापुरुषों के लक्षण भी हैं, आप देखो कोई भी महापुरुष उसमें ये लक्षण जरूर होगा, कौन सा? माफ करने का, क्षमा का। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। कायर जो होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर पुरुष होगा वो ही क्षमा कर सकता है। तो हम अपने को चेक करें कि मैं वीर हूं या कायर हूं, किसी की कोई कमी बात मेरे दिल में घर तो नहीं कर गई, अगर मैंने उसे क्षमा कर दिया वो बात को भूल जाना चाहिए। लेकिन अक्सर करके हम सब जब झांकेंगे अपनी अंतरात्मा में अपने अंदर, तो हमें ख्याल आएगा कि वास्तव में मैं उसको क्षमा नहीं कर पाया हूं। वही बात दूसरे का चिंतन बार बार बुद्धि में आता रहता है, इसलिए कहा है ये क्षमा करने की शक्ति आएगी ना जिसमें, वो ऑटोमेटिकली उसका व्यवहार बहुत मीठा होगा, मधुर होगा, मुंह के बोल बहुत मधुर होंगे। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, भगवान ने जब मनुष्य को बनाया, ये तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य को सब प्राणियों में बेस्ट बनाया भगवान ने, और उसमें भी मनुष्य को एक एक चीज भगवान ने बड़े सोच समझ कर दी। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी नहीं बनाई जवान में, हाँ क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहता था कि इंसान सख्ती करे, किसी से झगड़े, कटु वचन बोले। लेकिन आदमी तो बड़ा क्रिएटिव है, हाँ? आदमी ने कहा अरे भगवान तुमने हड्डी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, मैं बिना हड्डी के ही काम चला लूंगा, हाँ? तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं इसके लिए कि टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। हम कह देते हैं इस बात को हल्के रूप में, क्या करें भाई, मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरी जवान फिसल गई, माई टंग स्लिप्ड। क्यों जवान फिसल जाती है? क्यों जवान फिसल, टंग स्लिप क्यों हो जाती है? घर में फिसलने का ज्यादा स्कोप कहां रहता है भाई? ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, कहां ज्यादा स्कोप रहता है? बाथरूम। क्यों? गीली जगह है, पानी है। अब बेचारी ये जवान गीली जगह में या सूखी जगह में, कहां है मुंह? क्या है? गीला है, इसमें बेचारी ये जवान फिसल जाती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जवान नहीं फिसलती, क्या होता है हमारा मन, वो फिसल जाता है, मन कमजोर पड़ जाता है। पहले मन के अंदर कोई क्रोध का संकल्प आएगा, बदले लेने की भावना आएगी, फिर वचन में भी आएगा और फिर कर्म में आता है। तो बोल में बाद में आता है, पहले मन के अंदर आता है। तो इसलिए अगर हम जीवन में सदा खुश रहना चाहते हैं, जॉय हैप्पीनेस चाहते हैं, तो जो भगवान ने जो ये मीठा वचन के लिए ये जवान दी है ना, इसको हम यथार्थ रीति से इस्तेमाल करें। और इसीलिए ऐसा जब हमारी ये हो जाती है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, तो बस फिर कभी भी हम अपनी कमजोरियों से हार नहीं सकते। अब देखिए ये आदमी अब चला तो रहा है साइकिल, लेकिन मजा ले रहा है कार का, मेंटली इज एंजॉइंग द कार राइड, देख रहे हैं ना? तो क्यों? यहां तक कि पांच उंगलियां भी भगवान ने हाथ में बराबर नहीं बनाई। इसलिए अगर हम किसी का सोचेंगे अरे मेरे पड़ोसी पर तो कार है, मेरे पास तो स्कूटर ही है, उस पर इतना बड़ा बंगला है, मेरे पास तो एक छोटा सा फ्लैट है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। कंपेयर करा, कभी खुश नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमेशा बिग थॉट्स वो हम रखें और विचार अपने महान रखें। अब्दुल कलाम जी ने भी बड़ा अच्छा कहा था, स्वप्न देखो जो मैंने बताया ना, तो ड्रीम्स, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच वी सी थ्रू व्हेन आवर आईज आर क्लोज्ड। स्वप्न वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि स्वप्न वो है जो हमें सोने नहीं देते। स्वप्न अर्थात जो भी हम लक्ष्य रखते हैं जीवन में प्राप्त करने का, अगर हमारे अंदर अंदरूनी इच्छा है तो वो हमें नींद नहीं करने देंगे, बार बार बुद्धि चलती रहेगी कैसे हम इस लक्ष्य को हासिल करें। तो ऐसे ही थॉट्स जो हैं, यहां का भी लक्ष्य है, हमारी संस्था का क्या लक्ष्य है बताया आपको? ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं इंजीनियर, ऐसे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं क्या बनने के लिए? हाँ, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये पद की प्राप्ति करना। इसीलिए जब लक्ष्य महान है ना, तो लक्षण अपने आप महान होते जाएंगे। और इसीलिए कहा है ना हमारी भारतीय संस्कृति में कि मातृ देव भव, पितृ देव भव, अतिथि देव भव, और इतना ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सबको हम देवता, हमने इन सबको देवता माना, माता पिता अतिथि और वसुधा को, परिवार को, पूरा सृष्टि ही हमारी परिवार है। इसके पीछे कभी आपने सोचा वसुधा ही परिवार है। कैसे? जीवन में खुश रहने का एक और बात है, हार्मनी, सुसंवादिता। तो हम बाहर की हार्मनी की तो बात करते हैं कि हमारे हार्मनी रहे परिवार के अंदर, जातियों के अंदर, समाज के अंदर, पर्यावरण की हार्मनी रहे, नेचर की हार्मनी रहे, लेकिन सबसे बड़ी हार्मनी यह है हार्मनी विद इन द सेल्फ, हमारे अंदर की हार्मनी। हार्मनी माने सुसंवादिता। हार्मनी अंदर का मतलब हार्मनी बिटवीन हेड, हार्ट एंड हैंड, दिमाग की, दिल की और हाथ की, इन तीनों में अंडरस्टैंडिंग रहे। होता क्या है, कई बार दिमाग एक बात कहता है, दिल दूसरी बात कहता है और हाथ से हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो तीनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, इसीलिए बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि ये शरीर है, जिस्म है, कि जिस्म और रूह के बीच, जिस्म और रूह के बीच एक अजीब इत्तफाक देखा, क्या कि उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हो सके। जिंदगी भर आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन हम अंदर से समझते हैं भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति आती है, मुंह से बोल भी लेते हैं, कई बार हाथ से भी गुस्सा कर लेंगे, ये सब बात कर लेंगे। आत्मा और शरीर में ये अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक दुख का कारण है, ये हमारी खुशी को गायब कर देता है। हम क्रोध करते हैं तो जिस पर क्रोध करा उसके तो बाद में खुशी गायब होगी, हमारे अंदर ही अंदर हमें दुख होता रहेगा, और क्रोध करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा, वो पश्चाताप अवश्य करता रहेगा। तो इसीलिए ये हमें अपने अंदर देखते रहना है। अब देखिए, बचपन में हम सब ने ये कहानी पढ़ी है, कौन सी, शेर है, शेर जंगल में आराम कर रहा था, चूहा उसके ऊपर आया, नाचने लगा, तो शेर ने चूहे को पकड़ लिया, तो मैं तुझे मार देता हूं। तो चूहे ने कहा, महाराज कभी मैं शायद आपके काम आ जाऊं, मुझे छोड़ दो। तो ये कैसे हो गया भाई, ये तो जॉय की बजाय दूसरा हो गया। खैर कहानी सुनते हैं। तो चूहा जब वो हो गया तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया। उसके बाद सब जानते हैं कहानी, जब शेर फंस गया तो चूहे ने उसे निकाला। और फिर इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, क्या शिक्षा मिल सकती है इस कहानी से? हाँ, छोटा भी कभी काम आ सकता है। और क्या शिक्षा मिल सकती है? हाँ, ये देखिए, शेर को ईगो था, अरे तू मुझे क्या वो करेगा, अहंकार था, लेकिन चूहे ने उसका अहंकार नष्ट कर दिया उसके काम आकर के। इसलिए आई ईगो जो है ना, ये मुख्यतः दुखों का कारण है। अगर हम अपने अंदर से अहंकार जितना कम करते जाएंगे, ये हमारे अंदर सुख लाता रहेगा। आपको शायद आज बताया हो, हाँ, जीवन में एक दूसरे को स्वीकार कर लेना, झुकना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है सुख की। कौन झुकता है? झुकने का गुण किसमें होता है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना, अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाएगा। तो अगली बार आप कभी ईगो आए, अहंकार आए, आप सोचो मैं कम हूं, मैं क्यों झुकूं, इसे मेरी बात माननी चाहिए। बाप का बच्चे से, सास का बहू से, पार्टनर्स का भाई से कई बार वो हो जाते हैं, ये दुख का कारण बन जाते हैं। तो अगली बार कभी ऐसा हो तो आप कहना, भाई जब बाबू गए थे ना तो वहां बताया गया था, अकड़े रहना किसकी पहचान है? मुर्दे की। अपने को कोई मुर्दा स्वीकार करेगा? नहीं, सिरन की दौड़ जाएगी, एकदम ये निकल जाएगा। तो इसलिए अपने अंदर हमेशा यही लाना चाहिए कि वो क्या पहचान है। और इसमें बस ये खुशी का प्रिंसिपल है, एक ऑफर लव रिसीव डेडिकेशन, समर्पण की भावना। यहां पर परमात्मा ने जब हमारे बड़े, जब संस्था की स्थापना हुई, जो आप दादी देख रहे हैं सब बच्चे थे 12-15 साल के, ईश्वर ने इतना प्रेम दिया, इनका जीवन समर्पित हो गया। ऑफर रिकॉग्निशन रिसीव कंट्रीब्यूशन, ऑफर शेयरिंग रिसीव लर्निंग ऑफर ट्रस्ट रिसीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सब जीवन में जानते हैं लेकिन इस बात को स्वीकार करने में फिर भी हमें समय लगता है. अब देखिए ये क्या है, आजकल हेल्थ कॉन्शियस सब हैं, अब टीवी में दिखा रहे हैं ये करो शीर्षासन, अब वो रिवॉल्विंग चेयर पर है वहीं करने लगे तो क्या होगा, हा? शीर्षासन. तो इसीलिए कहा है कि नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए. हाँ, नहीं तो बाद में पछताना न पड़े. हाँ ऐसा हम सब ने ना, इसलिए एक जीवन में और खुशी की बात तब होती है खुश जब कॉपरेशन मिलता है, एक दूसरे से सहयोग मिलता है. सहयोग नहीं मिलता तो दुख होता है. बचपन में आप सबने खरगोश चूहे की कहानी पढ़ी है, खरगोश और कछुए की. हाँ, खरगोश और कछुए में रेस हुई तो कौन जीता, कछुआ जीत गया. हालांकि खरगोश को जीतना चाहिए था लेकिन कछुआ, क्योंकि खरगोश ने क्या किया, सो गया थोड़ा. बस इतनी कहानी हमने पढ़ी है, इसके आगे भी कहानी है, सुनिए आगे कहानी. तो जब स्कोर कछुए के फेवर में 1-0 हो गया तो खरगोश सोचने लगा मैं तो इतना तेज दौड़ने वाला, मैं कैसे हार गया भाई. तो उसने सेल्फ एनालिसिस की, उसने कहा कि भाई मैं आलस में पड़ गया, मैंने सोचा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा इसलिए आलसी. तो वो कछुए के पास गया, भाई कल हम फिर दौड़ेंगे. तो कछुए ने कहा ठीक है फिर दौड़ लेंगे. तो अगले दिन फिर देर रेस हुई लेकिन आज खरगोश ने पक्का किया हुआ था आज मैं सोऊंगा नहीं. तो जैसे ही रेस 1-2-3 शुरू हुई खरगोश दौड़ा और एकदम जीत गया. तो स्कोर आज कितना हो गया, 1-1 हो गया स्कोर. अब फिर कछुआ सोचने लगा कि भाई मैं ऐसे तो खरगोश से जीत नहीं सकता, खरगोश बड़ा फास्ट है, क्या करूं ऐसा कि मैं जीत जाऊं. तो उसने सोचा, उसको एक युक्ति सूझी. वो फिर खरगोश के पास गया, भाई कल हम फिर दौड़ेंगे. तो खरगोश ने कहा अच्छा, उसे तो था मैं तो तेज दौड़ने वाला हूं हार ही नहीं सकता. तो कछुए ने कहा ठीक है रोज हम इधर दौड़ते हैं आज हम इस डायरेक्शन में दौड़ेंगे. तो उसने कहा ठीक है. वो दौड़ शुरू हुई और खरगोश ने पक्का किया था मुझे सोना नहीं है. वो बड़ी तेजी से दौड़ा, आगे एक नदी थी. अब नदी में जाके के पास जाके तो खरगोश बेचारा बेचैन होके टहलकदमी करने लगा. कछुआ धीरे धीरे आया, ओ बस खरगोश की तरफ एक स्माइल दी उसने, पानी में उतर गया और जीत गया वो. तो आज स्कोर कितना हो गया, फिर 2-1 हो गया कछुए के फेवर में. फिर खरगोश सोचने लगा कि भाई ये तो स्लो एनिमल होते हुए भी मुझसे जीत गया, मैं इतना फास्ट हूं, क्या करें ऐसा कि हमेशा हम जीतते ही रहें कभी हारे नहीं. तो दोनों मिले आपस में और दोनों ने कहा देखो भाई तुम्हारा भी एक वीक पॉइंट है कि तुम स्लो हो, मेरा भी वीक पॉइंट है कि मैं पानी में नहीं जा सकता. हा? तो हम दोनों मिलकर अगर रेस करें तो हम सदा जीतते रहेंगे. तो अगले दिन रेस हुई तो जहां जमीन थी वहां खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया, बहुत तेजी से दौड़ गए, और जहां पानी आया वहां कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर. तो सुख का और खुशी का एक ये भी प्रिंसिपल है सहयोग, विन विन सिचुएशन जिसे बोला जाता है. हम हमेशा जीते जीवन में, हारे नहीं, और वो तब होगा जब हम सहयोग करते रहेंगे और जितना हमारा सहयोग होता रहेगा उतना आगे बढ़ते रहेंगे. अब देखिए हाँ, जब मौका हाथ से निकल जाता है ना तो कई बार पछतावा होता है, ओहो इतना बढ़िया मौका आया था. अब देखिए कुत्ता, वैसे कुत्ता और बिल्ली में बैर है लेकिन कुत्ता आराम से सो रहा है, बिल्ली आई धीरे धीरे खाना खा के कुत्ते का चली गई. अपॉर्चुनिटी, मौका. तो मौका कभी मिस नहीं करना चाहिए. तो आज आप सब लोग जो यहाँ आबू आए हैं ना, यहाँ घूमने के लिए या ब्रह्मा कुमारी संस्था देखने के लिए नहीं, ये आपको जीवन में एक मौका मिला है कि जो आपकी जीवन की दिशा को ही बदल देगा. अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स अगेन एंड अगेन, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और अपने जीवन में सदा काल का खुशी का शांति का अनुभव कर लीजिए. अब देखिए इसका मैं आपको, अभी जैसे आप सबको अनुभव होगा वन डे मैच होता है ना कभी, हाँ बस इंडिया पाकिस्तान ट्रेडिशनल राइवर हैं, मैच हो रहा है लास्ट ओवर है, आदमी अपना बस सिगरेट पी रहा है मैच देख रहा है. मैच देखते देखते इतनी देर में उसकी युगल आई, हाँ बच्चे को दे गई कि भाई तुम जरा इस बच्चे को संभालो और मैं घर का काम कर लेती हूँ। बच्चे को दूध पिला रहा है, छोटा बच्चा था, मुंह में बॉटल दूध, जरा उसे वहीं कर देना। तो वो आदमी बस बच्चे को खिलाने लगा, मैच भी देख रहा था। फिर बच्चा सो गया तो बच्चे को थोड़ा सुला दिया। इतनी देर में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज में मैच आ गया, 3-4 बॉल रह गई बिल्कुल, और कोई भी जीत सकता था। बच्चा रोने लगा। अब जब बच्चा रोने लगा उसे बड़ी कुड़न सी हुई, अरे भाई ये क्या रोने लगा बच्चा। तो फिर उसने क्या किया देखिए जरा, लाना बस वेट माधव भाई, हाँ बस छोड़ दो एक मिनट, मैं कर रहा हूँ, बस बस छोड़ दीजिए। हाँ तो इसके बाद देखिए, हाँ पहले वो सिगरेट पी रहा था और राइट, पहले वो सिगरेट पी रहा था, उसके बाद उसने ये देखिए बस जल्दी में उठाया बॉटल अपने मुंह में और सिगरेट बच्चे के मुंह में, देख रहे हैं। टेंशन में ये होता है, योर टेंस मूवमेंट कुड बी ए साइट सीन फॉर अदर्स। तो टेंशन में हम हमेशा काम बिगाड़ते ही हैं, टेंशन में काम बन नहीं सकता। तो ये जो राजयोग है ना, ये हमें टेंशन से रिलीव करता है। और ऐसी परिस्थिति आप चाहेंगे आपके घर में आए, कोई नहीं चाहेगा। हाँ तो इसलिए बस अभी अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए हाँ, मछली मारने गया ना, मछली कांटे में कब फंसती है? जैसे मुंह खोलती है एकदम फंस जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ का इसलिए कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर। कई बार हम बोलते हैं और बोलने की वजह से कोई ना कोई चीज में फंस जाते हैं। और इस कारण से यहाँ का क्या प्रिंसिपल है बताया होगा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हालांकि मैं अभी वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पिछले आधा पौना घंटे से बोले ही जा रहा हूँ। बस 5-10 मिनट के अंदर अभी हम लोग ये खत्म करते हैं। ये एक आदमी जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते जाते उसे भालू मिला। हाँ तो बस भालू मिला, वो एकदम दौड़ने लगा उल्टा, तो आगे खाई थी और पीछे पीछे भालू आ रहा था। तो अब वो सोचने लगा खाई को मैं कैसे पार करूं भाई, खाई बड़ी है, हाँ एक ही जंप में पार करूं या 3 जंप में, एक में पार नहीं हो सकती। तो अगर वो सोचे चलो एक में पार नहीं हो सकती, मैं 3 जंप में पार करूं तो क्या होगा, अंदर जाएगा। कहने का भाव क्या है कि वन हैज टू क्रॉस ए डिच इन 1 जंप ओनली। कोई आती, अगर हम दिल और दिमाग इन दोनों के सहयोग से कोई परिस्थिति को पार करेंगे तो हम हमेशा विजयी रहेंगे। और हाफ हार्टेडली अगर हमारा कोई काम होता है तो हमें सफलता भी उतनी ही मिलती है और संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। और सफलता होती है तो खुशी होती है, जॉय होता है, हैप्पीनेस होती है, सफलता नहीं होती है तो दुख होता है। इसलिए अभी जीवन में सदा खुशी के लिए पतंग चढ़ाई है आप लोगों ने, पतंग तो उड़ाई होगी ना, बस पहले पतंग से पहले, हाँ रात को अभी सोएंगे ना, जाके सोने से पहले ये काम कीजिएगा। देखिए क्या, एक खोपड़ी का ढक्कन खोलिएगा, खोल सकते हैं ऐसे हाँ भाई, कचड़ा जब सारा दिन भर कचड़ा डालते रहते हैं किसी बॉक्स में और फिर कचड़ा साफ करना होता है, कचड़े का ढक्कन हटाते हैं फिर उसके अंदर से वेस्ट चीज डालते हैं, वेस्ट थॉट्स है और इरिटेशन के और फ्रस्ट्रेशन के जो नेगेटिव विचार हैं दिन भर में वो सारे, क्योंकि रात को वो जब आप सोने जाएंगे ना वो दिन भर की बात याद आती रहेंगी। तो ये ऐसे ढक्कन खोल के ये सारे विचार डाल दीजिए उसमें, इससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग फैकल्टी है ना वो पूरा वर्किंग ऑर्डर में रहेगी। और इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप बट क्वालिटी ऑफ स्लीप विच काउंट। कई बार देखा होगा आपने 6-7-8 घंटा भी सो लिए फिर भी फ्रेशनेस अनुभव नहीं हो रही है, और 3-4 घंटा भी सोए हैं और बड़ी अच्छी नींद आ गई है उसके बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी और इसके ऊपर बाद में आपको और बताया जाएगा कैसे हम ये निगेटिव विचार दूर करके। बस आज तो आप इतना करिएगा, सोने से पहले सीधा बिस्तर में लेट नहीं जाइएगा, 2-3 मिनट बैठिएगा और बस जो आपको योग में बताया गया है कि मेरा शरीर यहाँ अब बिस्तर में आराम करता है और मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा की गोदी में जाकर मैं आत्मा विश्राम। ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ। तो जब डिटैच हो जाते हैं ना तो फिर बाहर का वातावरण असर नहीं करता। तो इसीलिए जितने डिटैच हो जाएंगे, बाहर जितनी गर्मी है, अगर आप एसी रूम में हैं, आपका एनवायरमेंट डिटैच कर लिया, अंदर बड़े आराम से है, ठंडे वातावरण, क्योंकि एटमॉस्फेयर डिटैच हो गया। इसीलिए अपने को शरीर से डिटैच कर लेंगे तो जितने भी बातें हुई होंगी सारे दिन भर में कोई नहीं, और आप आराम से शांति से सोएंगे। और जो संकल्प करके सोएंगे ना रात को, भाई कल सुबह मुझे 4 बजे नींद खुल जाए, ऑटोमेटिकली आपकी नींद उसमें खुल जाएगी। और ये पतंग चढ़ानी आती है ना, तो बस खुशी का क्या है, पतंग जब चढ़ाते, पतंग ऊपर कब जाती है, जब हवा होती है। हवा नहीं होगी तो बहुत पतंग ऊपर नहीं जाएगी। तो जीवन में ना ये जो लिखा है ना, तूफान को क्या समझो, तोहफा समझो। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, तो उसको ये समझना चाहिए तूफान हवा है बहुत तेज, ये मुझे और ऊंचा पतंग की तरह ले जा रही है। बस आपके मुंह से ये निकलना चाहिए जब आप जाओ, क्या कि बहारों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, मैं हर हाल में गुजरा हूं मगर गुजरा हूं मस्ती से। जीवन में बस ये रहे। और इसके बाद आज का ये लास्ट स्लाइड है कि फीलिंग डाउन। अभी तो बड़ा अच्छा खुशी आनंद का अनुभव हो रहा है, संभव है कि जब आप वापस लौटे हैं तो कभी भाई खुशी कम हो जाए। कई परिस्थितियां आती हैं, सामाजिक है, पारिवारिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, कोई परिस्थिति। तो आप क्या करिएगा, यहां से जब जाए ना तो यहां पर 4-5 दिन आपके बड़े खुशी के गुजरेंगे, तो आप अपने साथ ये चीजें ले जाइएगा। ब्रिंग बैक सम, यहां से कुछ लिटरेचर ले जाइएगा, कुछ वीडियो कैसेट ले जाइएगा, सीडीज वगैरह, कुछ ऑडियो कैसेट वगैरह, यहां के संपर्क में रहिएगा लिटरेचर वगैरह। तो फिर से अगर ऐसा मूड होगा तो आप ऑटोमेटिकली खुशी के मूड में आ जाएंगे। और ये खुशी का मूड आपको जीवन में ना हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा और खुशियां प्रदान करता रहेगा। बस इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आप जीवन में सदा खुश रहें, आनंद रहें। वेरी वेरी गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंगल भाई जी। फिर भी मैं आपके लिए 2 शब्द आधार के कहना चाहूंगी, आपकी सरल वाणी गहरे विचार करते हैं यही ललकार, जो शुभ है करो स्वीकार, करो फुल स्टॉप जो है बेकार, आपने जो बताया हमें उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।